हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय दिव्यता तथा दिव्य सेवा के 24वें श्लोक की चर्चा करेंगे। ये श्रील सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं, वो प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, शौनक आदि ऋषि के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पार्थिवा दारुणो धूमा, एक भक्त माइक पे बोले तो अच्छा रहेगा। पार्थिवा दारुणो धूमा,
पार्थिवा दारुणो धूमा,
तस्मादग्निस्त्रयीमयः,
तस्मादग्निस्त्रयीमयः,
तमसस्तु रजस्तस्मात्,
तमसस्तु रजस्तस्मात्,
सत्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्,
सत्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्।
तो यह श्लोक क्या बोल रहा है? पार्थिव मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी से दारुण, दारुण अर्थ हो गया जो अग्नि जलाने वाली लकड़ी होती है, और धूमास पृथ्वी से वह लकड़ी श्रेष्ठ है जो पृथ्वी से आती है, जो उसको अग्नि में जलाने के लिए प्रयोग करते हैं। उस लकड़ी से धूम्र अर्थात धुआं श्रेष्ठ है, और उस धुएं से तस्मात उस धुएं से अग्नि श्रेष्ठ है जो त्रयीमय है। त्रयीमय का अर्थ है अग्नि जो तीन प्रकार के वेद के जो यज्ञ हैं उनका संपादन करने में लाभ करती है। उसी प्रकार से तमस से रजस श्रेष्ठ है, तमस मतलब तामसिक, तमगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है, और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि सत्वगुण से ब्रह्म का दर्शन प्राप्त होता है। ठीक, ये श्लोक समझ में आ गया धारणा? ट्रांसलेशन, ओ ट्रांसलेशन तो मुझे प्रभुपाद का मुझसे खोलना पड़ेगा, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, प्रभुपाद जी का अनुवाद हम पढ़ रहे हैं। अग्नि काष्ट मृदा का रूपांतर है, मृदा मतलब मिट्टी, उसका एक मैनिफेस्टेशन है अग्नि काष्ट। अग्नि काष्ट मतलब हो गया अग्नि को जलाए जाने वाली लकड़ी, लेकिन काष्ट से बेहतर धुआं है। वो क्यों है उसकी चर्चा हम अभी करेंगे। अग्नि उससे भी उत्तम है क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। देखिए, इस अध्याय में ये बताया गया कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ अभिधेय है, और यह भी बताया गया कि सर्वश्रेष्ठ भजनीय कौन है? भगवान विष्णु। तो इसी बात का प्रतिपादन करने के लिए सारे श्लोक बोल रहे हैं। इस समय ये जो बोल रहे हैं सूत गोस्वामी, ये बोल रहे हैं कि क्यों भगवान विष्णु की ही पूजा करनी जानी चाहिए। इससे पहले वाले श्लोक में उन्होंने बोला कि जो भी स्थितादय हरि विरेंच संज्ञा, वो जो बोल रहे हैं कि वही परम पुरुष भगवान कृष्ण सतगुण रजगुण और तमगुण को स्वीकार करते हैं, और जब वो रजगुण को स्वीकार करते हैं तो ब्रह्मा जी के रूप में उत्पन्न होते हैं, सतगुण को स्वीकार करते हैं तो विष्णु के रूप में होते हैं, उत्पन्न नहीं प्रकट होते हैं, और शिव जी के रूप में वह तमगुण को स्वीकार करते हैं। अब वो समझा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान विष्णु शिव जी और ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हैं। उसके लिए उदाहरण बता रहे हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी से आने वाली जो लकड़ी है, लकड़ी से श्रेष्ठ है धूम या धुआं, और धुएं से श्रेष्ठ क्या है? अग्नि। उसी प्रकार से तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण, और रजोगुण से श्रेष्ठ है सत्वगुण। तो इस कारण से आगे समझ में आ जा रहा है, इस कारण से, और क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि सत्वगुण जो है ब्रह्म का दर्शन कराने वाला होता है। तो ये सब बातें बड़ी गुही हैं, अभी मैं एक बात बोलूंगा उसको खोल के और एक्सपैंड करा जाएगा। जब मैं बोल रहा हूँ सत्वगुण ब्रह्म का दर्शन कराने वाली बात है, करता है, वो इनकम्प्लीट बात है, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, भी टीका में बताया जाएगा, विश्वनाथ चक्रवर्ती बात बताएंगे। तो आप लेके आ सकते हो बुक अगर चाहो तो, आपकी टीका वो भी पढ़ाऊंगा उसको। आज क्लास तभी खत्म होगी जब खत्म होगी, ठीक है, घंटा नहीं देख रहे हो। तो ये हो रहा है। तो अब हम लोग इसी प्रकार से भगवान, स्वाभाविक सी बात है, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार चाहता है उसके लिए श्रेय कौन, किसी प्राप्ति होगी? भगवान विष्णु की प्राप्ति, भगवान विष्णु से ही श्रेय की प्राप्ति होगी, ये बात बोली जा रही है। जैसे कि यहाँ पहले बोला गया था, श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनो नृणामसी, जो व्यक्ति अपने परम श्रेय की प्राप्ति करना चाहता है वह सत्वगुण की मूर्ति या शुद्ध सत्व की मूर्ति भगवान विष्णु की उपासना करे, उसको बात यहाँ पे बोल जा रही। सत्वगुण ही जीव का कल्याण करने वाला है, ये बात यहाँ पे स्थापित करते हैं। और उस व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करता है वह अपने आप सत्वगुण में स्थित हो जाता है। इसको पढ़ते हैं, तात्पर्य प्रभुपाद। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान की भक्तिमय सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। यह तो बड़ा स्पष्ट है, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। इसके आगे यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को सत्व गुण के पद तक ऊपर उठना होता है जिससे वह भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। अगर आपने दूसरा अध्याय पढ़ा होगा, जब व्यक्ति जितनी मात्रा में सत्वगुण बढ़ जाता है उतनी मात्रा में भक्ति करना अच्छा लगता है। जैसे देखिए, जिसके हृदय में थोड़ा सत्वगुण बढ़ गया है साधना इत्यादि करके, तो उसको ये क्लास अच्छी लगेगी, और नहीं तो लगेगा ये क्लास क्यों होती है, क्लास क्यों रखी गई है, ये क्लास क्यों रखी गई है। अगर ये चित्त में आ रहा है तो उसका मतलब ये रजोगुण तमोगुण बहुत बढ़ा हुआ है। और हो सकता है आप थके हो, तो भी एक ऑप्शन है। लेकिन प्राय अगर आपको भागवत पढ़ना सुनना अच्छा लग रहा है, मतलब सत्व का है चित्त में, सत्व है, और नहीं है तो सुनने से बढ़ेगा, वो कोई अलग बात नहीं है। यहाँ बोल रहे बेसिकली इसमें बताया गया था कि जब व्यक्ति के हृदय में सत्वगुण बढ़ जाता है भक्ति करते करते, तो वो भक्ति के संपर्क से एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता, उसका मन जो है भगवत भक्ति के संपर्क से बड़ा प्रसन्न हो जाता है, नाम जप करके भक्ति करके बड़ा प्रसन्न हो जाता है। लेकिन एक कठिनाई है सत्वगुण के संग, कोई बता सकता है कठिनाई, जो गीता में बताते हैं सत्वगुण के सुख की एक कठिनाई है, देर में मिलता है एक है, और बंधन करता है ठीक है, लेकिन सत्वगुण को सुख प्राप्त करने का एक दिक्कत है उसमें। शुरुआत में वो कड़वा लगता है, शुरुआत में वो विष जैसा लगेगा, बाद में आनंद जैसा लगेगा, तो ये दिक्कत है ठीक है। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि इस प्रगति के लिए प्रमाणिक दक्ष गुरु के पास जाएं, तो उन्हें तमस रजस सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सके। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर टीका कर रहे हैं, यह आचार्यों की टीका में नहीं, प्रभुपाद जी का स्पेशल टेक है इस पे, इस श्लोक के ऊपर। ये क्या, ये पिछले के श्लोकों को ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जो सतगुणी व्यक्ति होता है उसके लिए भक्ति करना वाकई शुरू होता है। अच्छी भक्ति, प्रॉपर भक्ति सतगुण में शुरू होती है, तो अब कोई तमोगुणी है वो भक्ति नहीं कर सकता क्या? तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि अगर जिसका मार्गदर्शन में है वह शुद्ध भक्त है, तो घोर तमोगुणी व्यक्ति भी शुद्ध भक्त हो सकता है। अब आप लोग से एक छोटा सा प्रश्न किया जाएगा, क्या आप लोग शास्त्र में कोई धारण जानते हो जो घोर तमोगुणी व्यक्ति एक वैष्णव का आश्रय लेकर शुद्ध भक्त बन गया? मृगारी, ओके, मृगारी अजामिल। और रजगुणी व्यक्ति भगवान का भक्त बन गया कौन? ध्रुव महाराज। और किसी का याद आ रहा है तमोगुण की और एग्जाम्पल? याद आ रहे हैं आपको जो तमोगुण से प्रभावित रहा हो और भगवान का शुद्ध भक्त बन गए? ठाकुर रत्नाकर भी माता दीति की बात दे सकते हैं, वो घोर उनका बहुत गुण। आप कहेंगे दीति तमोगुण में है क्या? तमोगुण में है या नहीं, लेकिन उनका विचार बहुत, भक्ति जो था उस टाइम बहुत प्रभावित थी, किसी को मारने के लिए भक्ति करना ये तमोगुण का विचार है। जिस प्रकार से वह भी जो है शुद्ध भक्त हो जाती है। कुछ कठिनाई आ रही शास्त्री जी मन में विचार? आपको सोच रहे हैं कि मैं माता दीति को तमोगुण से तमोगुण ही कह रहा हूँ, लेकिन हर व्यक्ति, देखिए ये आपको लगता है कि भगवान गीता में बोलते हैं इस जगत में सभी लोग गुण से प्रभावित रहते हैं, शुद्ध रूप से कोई भी नहीं। इसमें स्पष्ट वर्णन है, किसी का अहित करने के लिए अगर कोई भक्ति कर रहा है तो तमोगुण से उसका चित्त प्रभावित है, घोर उनका इच्छा है। इस प्रकार भक्ति करने की इच्छा तो भगवान का कृष्ण, इधर बैठिए आराम से बैठिए। तो खैर जो भी है, आप बात हम क्या कर रहे थे, हाँ बात यह है कि जो व्यक्ति घोर तमोगुण में भी कोई है तो भी वह भगवान की भक्ति करके, भक्तों का आश्रय लेकर के वो शुद्ध हो सकता है, ये बात बोली जा रही है। अतएव यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। ये तो बड़ा स्पष्ट है, देवताओं की पूजा करके भगवान उतना फायदा नहीं होता, या वो फायदा नहीं होता जितना भगवान विष्णु की पूजा करके होता। विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सारे भिन्नाश प्रकट होते रहते हैं, अतएव भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को उस सत्व पद तक ऊपर उठने मदद नहीं देते जो अकेला ही मनुष्य को बंधन से छुड़ा सकता है। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, भगवान विष्णु के अतिरिक्त जो कोई भी जीव है वह सब माया से वशीभूत है, तो उनका आश्रय लेकर के व्यक्ति माया से पार नहीं जा सकता। माया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मिताम परंतु, क्यों? क्योंकि मायापति केवल कृष्ण ही है, विष्णु ही है। ये बात बोल रहे, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये तो इजी है समझना। जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य की सभ्य अवस्था जिसमें उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना होती है रजोगुणी अवस्था है। इस अवस्था में भगवान की रंच मात्र अनुभूति हो पाती है जो दर्शन कला एवं तथा चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। किंतु सत्वगुण उससे भी उच्चतर गुणावस्था है जिसमें परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। क्या अर्थ है इसका? ये तो आप समझ रहे हैं कि निम्न पशु जीवन तमोगुण में है, उन्हें कुछ पता नहीं जीवन के मूल्यों के बारे में, आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में कुछ पता नहीं, स्पष्ट है। अब मनुष्यों को रजोगुणी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उनकी बहुत सारी लालसा होती है, ये प्राप्त करना है, वो चीज करनी, ये चीज करनी है, और वहां पे कुछ क्रिया होती है, तो इसलिए उसको श्रेष्ठ कहा जा रहा है। और सत्वगुण की अवस्था में व्यक्ति थोड़ा समझने लगता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य धन कमाना नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर कोई सोचे कि हमारे जीवन की सफलता केवल पैसा कमाना है, जो कि प्रायः समाज में लोगों का होता है, तो रजोगुण से प्रेरित व्यक्ति है। यहाँ प्रभुपाद ने बताया। अब हम थोड़ा सा शिला शिला कुछ यहाँ तक पूछना है, समझ में आ रहा है? हाँ, एक बात है, क्योंकि ये थोड़ा पकड़ लीजिएगा पॉइंट को, ये बात टीका में भी आने वाला है। सत्वगुण का स्वभाव ही होता है प्रकाश। सत्वात है सत्वम संजायते ज्ञान, ये श्लोक है ना भगवद गीता में, सत्वम संजायते ज्ञान रजस लोभ एवच। तो सत्वगुण का स्वभाव ही है कि वो ज्ञान प्रकाशित करता है। इसको 11वें स्कंद में बताया गया है कि जब तक व्यक्ति को पूरा ये साक्षात्कार नहीं हो जाता कि वो आत्मा है, तब तक उसको सत्वगुण का अनुशीलन करना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक रूप से सत्वगुण ज्ञान बढ़ाने वाला होता है। जैसे सुबह उठना, स्नान करना, नाम जप करना, मतलब ये सभी कुछ सत्वगुण वृद्धि करने वाले, भागवत पढ़ने वाले, भागवत पढ़ना, जो उससे हमारे हृदय में सत्वगुण बढ़ता है और फिर स्वाभाविक रूप से आत्मज्ञान बढ़ता है। सत्वगुण अपने आप में ब्रह्म का दर्शन कराने में समर्थ नहीं है, भगवान का दर्शन कराने में समर्थ नहीं है, लेकिन हेल्पफुल है, ये बात बोली जा रही है, इट इज हेल्पफुल। भाई जैसे कि आप कोई फैक्ट्री में रहकर के हरे कृष्ण मंत्र जप करें और एक फार्म में रहकर जप करें तो अंतर नहीं महसूस होगा, तो वो बात है। अब ऐसा नहीं कि फार्म में रहने मात्र से भगवान का कोई दर्शन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो उसके लिए सहायक है, पृष्ठभूमि है, सहायता करता है। इसीलिए प्रभुपाद जी वर्णाश्रम की व्यवस्था करना चाहते थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके जब कहाँ हो पाता, दिन भर वो सारे आपके कोड ही घूमते रहेंगे, है कि नहीं? स्वाभाविक है, पूरा दिन आप उसमें मन में लगा, जिन वस्तुओं के संपर्क में आ रहे हैं उनका प्रभाव तो हम पर होगा ही ना, ये चीज है। अब हम लोग श्री सीधा स्वामी जी की टीका देखेंगे, बहुत ईजी है। वो कह रहे हैं कि उपाधि वैशिष्ठे न फल वैशिष्ट सदृष्टान्त माह। मतलब वो जो भगवान कृष्ण है वह तीन प्रकार की उपाधि ले लेते हैं। उपाधि मतलब पद ले सकते हैं, हाँ, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु भगवान, तो अलग अलग उपाधि लिए हैं, अलग अलग गुणों को स्वीकार कर रहे हैं, उसके कारण से जो उसकी उपासना करता है उससे उनको अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, उसको एक दृष्टांत से समझा रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा वह समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है उससे उत्पन्न होने वाला जो काष्ट है, जो लकड़ी है, उसमें दो गुण नहीं होते। एक होता है स्वतः प्रवृत्ति, जैसे ये लकड़ी है अगर ये ऐसी रखी हुई तो ऐसी रखी हुई है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, समझ रहे हैं? स्वतः प्रवृत्ति का अर्थ कोई हिल नहीं रही है ये, एक और जड़ता है इसमें, और दूसरा है कि ये प्रकाश नहीं देती, ये ध्यान पकड़ेगा। तमोगुण के उसे कंपेयर करते हुए कह रहे हैं लकड़ी जो है, जो पृथ्वी से आई है, वह लकड़ी में क्या गुण नहीं है? स्वतः प्रवृत्ति, वो हिलती नहीं है, अपने से नहीं हिलेगी। दूसरा कि ये प्रकाश नहीं देती, प्रकाश मतलब इल्यूमिनेटिंग, जैसे ये बल्ब रोशनी दे रहा है, लेकिन ये जो टेबल है ये रोशनी नहीं दे रही, लकड़ी की वस्तुएं रोशनी नहीं देती। कौन से दो गुण हैं जो लकड़ी में नहीं है? माइक में बताइए। यस, अब आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा कि
तो सामने नहीं, लकड़ी जो है वो जड़ है, वो हिलजुल नहीं सकती है और वो प्रकाश नहीं दे सकती, लाइटिंग नहीं,
ठीक। ये दो चीज, ये चीज जो है प्रभुपाद जी ने कंपेयर किया था पशुवत जीवन जी रहा, सो कुछ पता ही नहीं जीवन क्या है, जड़ है बिल्कुल, ठीक है, पेड़ की तरह रह रहा व्यक्ति, ठीक। उसके बाद वो कह रहे हैं साकाशात, उससे श्रेष्ठ जो है काष्ठात साकाद साकाशात प्रवृत्ति स्वभाव स्त्री मयो वेदोक्त परम। कह रहे हैं कि उससे श्रेष्ठ जो है वो है धुआं। धुआं कहां से उत्पन्न हुआ? लकड़ी से। लेकिन धुएं में प्रवृत्ति होती है, धुएं में एक्शन होता है। क्या धुआं आपको अग्नि प्रकाश दे सकता है? तो अब इसमें एक चीज, एक गुण आ गया और एक गुण अभी कमी है कि धुआं जो है वह आपको प्रकाश नहीं दे सकता, लेकिन खुद की मूवमेंट है, कुछ एक्शन है। तो एक्शन क्यों कंपेयर करने की, रजोगुण में व्यक्ति कार्य तो करता है लेकिन रजोगुण प्रकाशित नहीं करता चित्त को। समझ पा रहे हैं क्यों दृष्टांत इतना सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं कि रजोगुण में आदमी कार्य करता है लेकिन उसके रजोगुण व्यक्ति के चित्त को प्रकाशित नहीं कर सकता, इसलिए उसकी उपमा दी जा रही धुएं से। बहुत सटा करके बहुत बढ़िया से सेट किया हुआ है और बोले उससे श्रेष्ठ जो है वो है अग्नि। क्यों अग्नि श्रेष्ठ है? कि अग्नि जो है वह है प्रवृत्ति, उसमें प्रवृत्ति भी है मतलब उसमें एक्शन भी दिखता है और उसमें प्रकाश भी है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं, तो इसी प्रकार से तो अग्नि को अब फिर से रिवाइज किया जाए। लकड़ी है कि उपमा दी जा रही है, लकड़ी जो है वह तमगुण स्थानीय है और स्थानीय का मतलब समझे, उसके उपमा से दी जा रही है। और जो रजगुण है वह धुआं स्थानीय है और सतगुण जो है वह अग्नि स्थान। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक बात वो कहते हैं कि ये जो ईषत कर्म प्रयास प्रयास सत्य है, तो कह रहे हैं कि जो धुआं है इसमें प्रवृत्ति वाली वाली बात बोले, प्रवृत्ति से ये अर्थ लेना चाहिए कि कुछ कर्मकांड इत्यादि हो रहा है। रजगुण में जो व्यक्ति होता है, प्रभुपाद ने बताया ना विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, तो व्यक्ति जो कुछ कर्मकांड करता है, वेद की बात करता है, तो उसके द्वारा उसको वेद के नियम का कुछ पालन करता है, तो उससे वो कुछ संभावना है कि आगे जाके वो शुद्ध हो जाए। तमोगुणी व्यक्ति तो वेद के नियम का पालन ही नहीं कर पा रहा है, तो रजगुण में क्या वो कर रहा है, वो कुछ कर्म करता है, सकाम कर्म करता है, लेकिन वेद का नियम पालन कर रहा है, तो आगे जाकर वो ठीक हो जाए। और जब वो है सत्वगुण में स्थित हो गया तो वह पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज वो बोल रहे हैं कि जो रजोगुण है यह स उपाधिक ज्ञान का हेतु है। शास्त्री जी कुछ बताएंगे इसका मतलब क्या होता है स उपाधिक ज्ञान? देखिए इसका बस बहुत अर्थ बहुत सिंपल है जो मेरे को समझ में आया अभी तक। स उपाधिक ज्ञान और निरुपाधिक ज्ञान का अर्थ क्या होता है? उपाधि मतलब समझते हैं मैं शरीर हूं, तो जो स उपाधिक ज्ञान हो गया उसका अर्थ क्या हुआ? शरीर संबंधित ज्ञान, भोग के भोग का ज्ञान, ये सब का वर्णन आप रजोगुण में पढ़ सकते हैं। रजोगुण में लोभ बढ़ता है, लालसा बढ़ती है, निरुपाधिक ज्ञान हो गया जो आत्मा के ज्ञान के संबंध में। तो इसी संबंध में समझ पा, उसी का हेतु बनता है रजोगुण व्यक्ति को, मैं पुरुष हूं, मैं जगत का एंजॉयर हूं, भोगता हूं, इस प्रकार के ज्ञान का वो हेतु बनता है। और कुछ कुछ ब्रह्म के दर्शन की कुछ आशंका होती है, क्योंकि आज ये वैदिक नियमों का पालन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, आगे जाकर शुद्ध होकर के वह भगवान के ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि पूरी तरह से इसमें प्रकाशत्व नहीं है। रजोगुण में व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के बारे में नहीं समझ सकता, क्योंकि इसमें विक्षेप रहता है। जब हम लोग जप करते हैं तो कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा, इसका मतलब क्या है? देखो जब नींद आ रही है जप में तो हो रहा है तमोगुण, और जब हमारा मन भग रहा है कि आज यहाँ कल वहां ये करना है तो ये क्या दिखा रहा है? रजोगुण। तो क्योंकि रजोगुण में विक्षेप है, व्यक्ति देख नहीं पाता। जैसे तालाब का पानी अगर बहुत उथल पुथल हो तो आप उसके जो नीचे वस्तु है उसको आप नहीं देख सकते। उसी प्रकार से मन में जब तक विक्षेप रहेगा, ये करना है, वो करना, ऐसा बनाना, तो भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। अब वो कह रहे हैं यह सत्वम तत् साक्षात ब्रह्म दर्शन, लेकिन जब ये सत्वगुण है इससे ब्रह्म का दर्शन प्राप्त होता है, ब्रह्म के दर्शन में सहायक है। तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान विष्णु की उपासना करता है वह क्रमशः सतोगुण में स्थित होता है, भगवान का दर्शन प्राप्त करता है। अभी भी कहानी का समाप्त नहीं हुई, अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका को देखते हैं। कहेंगे कहाँ फंस गए हम लोग आज, आज कौन से दिन है? बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, कुछ बातें। वो पहली चीज बोलते हैं कि तमोगुण का कारण है, कार्य है ढकना, ये तो आप समझ गए। रजगुण का कारण है विक्षेप प्रस्तुत करना, ये ही करना, और सतोगुण का जो कार्य है वो है ज्ञान प्रकाश करना। तो वो कह रहे हैं सतोगुण इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यह शुद्ध सत्व के विपरीत नहीं है। शुद्ध सत्व स्थिति है वह, फिर से मैं रिपीट करूंगा, जो शुद्ध सत्व स्थिति है वह गुणों से परे की स्थिति है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण से परे की स्थिति है। ये नहीं सोचना चाहिए कि सत्वगुण से आपने रजोगुण तमोगुण निकाल दिया तो वो शुद्ध सत्व हो गया, ये सोचते हैं क्या आप? ऐसा मत सोचिएगा। रजगुण तमगुण सतगुण कभी भी अलग नहीं छांटे जा सकते हैं। बिल्कुल विशुद्ध सत्व जो है वह तुरिया स्थिति है, वह गुणों से बिल्कुल अलग स्थिति है, भगवान की स्थिति है, वसुदेव स्थिति। तो क्योंकि सतोगुण उधर उसकी हेल्प करता है, उधर ले जाने में मदद करता है, तो इसलिए इसको रजोगुण तमोगुण से श्रेष्ठ कहा जा रहा है। मुझे पता है बहुत फिलोसफिकल हो रही है। उसके बाद वही बात बोलते हैं जो मैंने आपको बताया था कि जो लकड़ी है उसके अंदर प्रवृत्ति नहीं होती, उसको श्रीधर स्वामी से लेते हैं, और उसके अंदर प्रकाशक की क्षमता नहीं होती क्योंकि वह अचेतन है। और उसी तरह धुएं के बारे में बोल रहे हैं कि धुएं में कार्य करने की शक्ति होती है लेकिन वह प्रकाश नहीं देता, और अग्नि जो है वह आकाश कार्य भी करती है प्रकाश भी देती है। तो ठीक है, वो कह रहे हैं कि अग्नि को त्रयमय क्यों कहा जा रहा है। शब्द आप देख रहे थे ना श्लोक में त्रयमय, तो कह रहे हैं त्रयमय मतलब वेदों के से इसका संबंध है, क्योंकि अग्नि अग्नि जो वेदों में यज्ञ बताए गए हैं उसका संपादन कैसे होगा, बिना अग्नि के तो नहीं हो सकता, इसलिए अग्नि को त्रयमय कहा जा रहा है। समझ में आ रही बात, त्रयमय क्यों कह रहे हैं, समझ में आ रहा है। जो तीन प्रकार के वेद हैं जो यज्ञों का वर्णन किया गया है उसको उससे वो यज्ञ बोल रहे ये यज्ञ करो तो यज्ञ कैसे होगा, बिना अग्नि के तो होगा नहीं, तो इसके बोल रहे हैं कि अग्नि जो है जैसे बोलिए ये काममय है तो इसके हृदय में काम एक बुरा काम से भरा हुआ है। तो त्रय मतलब जैसे आपने कहा त्रयगुण्य विषयावित नहीं, एक वेदों के बारे में बोलते हैं ना वेदवाद रतः पार्थ, श्लोक नहीं आ रहा गीता कमन में आ रहा है क्या हो त्रय उसमें भी आता है त्रैविद्य माम सोमपहपूत पापा ऐसे करके श्लोक है। त्रैविद्य मतलब वहां पे भी खाली वेदों के तीन उन भागों से वो डील करते हैं जिसपे विभिन्न यज्ञों का वर्णन होता है और उसके अनुसार वो यज्ञ करते रहते हैं। तो बेसिक बात यह है कि वो यज्ञ जो है उसका संपादन अग्नि से ही हो सकता है, धुएं से नहीं हो सकता और लकड़ी से नहीं हो सकता। जिस प्रकार से वेद का जो यज्ञ है उसका संपादन कैसे हो सकता है, अग्नि के द्वारा होगा ना लकड़ी से ना धुएं से, उसी प्रकार से ब्रह्म का दर्शन सत्वगुण के द्वारा होगा। ये बात बोली जा रही है, समझ आ रहा है ठीक। उसके बाद वही बोल रहे हैं कि रजोगुण तमोगुण से श्रेष्ठ है, वो तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है। वो कोट किए सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानम एवच। तो बड़ा स्पष्ट है सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से तम से लोभ उत्पन्न होता है, और ये विक्षेप ध्यान कुछ आपने देखा ऐसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में स्पेस डाउट, कुछ पता नहीं क्या करना है, रिलैक्स है, रिलैक्स नहीं कहना चाहिए उसको कहेंगे, और कुछ पता नहीं क्या करना है। तो ये जो है तमोगुण का लक्षण है। तो ये बोल रहे हैं मोह प्रमाद इत्यादि जो है और अज्ञान ये सब तमोगुण से होता है। अब वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, वो कह रहे हैं कि सतोगुण को श्रेष्ठ इसलिए कहा जा रहा है, अच्छा कहा जा रहा है, क्योंकि ये विशुद्ध सत को काटता नहीं, उसको विरोध नहीं करता, लेकिन ये ध्यान देना है कि सतोगुण अपने आप में ब्रह्म का दर्शन नहीं करा सकता। बिना भगवान की भक्ति किए व्यक्ति ना तो निर्विशेष ब्रह्म का अनुभव कर सकता है और ना भगवान का। इस बात को भागवत में आगे भी कंफर्म किया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है कि केवल सतोगुण का अनुशीलन करते करते व्यक्ति भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेगा, सहायक जरूर है। भाई जैसे सुबह उठते हैं तो सतोगुण का अनुभव करते हैं, लेकिन सतोगुण का अनुभव सुबह उठने मात्र से भगवान का दर्शन थोड़ा हो जाता है, सहायक है इसमें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप भगवान की भक्ति किए बिना भगवान को प्राप्त कर लोगे। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः। ये बात बहुत अच्छा कमेंट बोल रहे हैं। तो देखिए जहां पे श्रीधर स्वामी जी कुछ रख रहे हैं उस पर कुछ और एक्सप्लेन करना होगा उसी को लेकर के आचार्यगण एक्सपैंड करते हैं। तो ये हम यहाँ पे सीख रहे हैं। क्या हमने पॉइंट सीखा अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, सत्वम यद ब्रह्म दर्शन में क्या पॉइंट रह गया, तो इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अपने आप में सत्वगुण भगवान का दर्शन कराने में समर्थ नहीं, भगवान की भक्ति भगवान हेल्पफुल है लेकिन भगवान की भक्ति के बिना व्यक्ति सत्वगुण का दर्शन नहीं कर सकता। उसके बाद वो कह रहे हैं आगे वो बताते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वह आनंदमय है, आनंद ब्रह्म रूपम, जो ब्रह्म का रूप है भगवान का बता रहे हैं, वो ब्रह्म दर्शन पे बता रहे हैं ब्रह्म का अर्थ क्या है। तो कह रहे हैं ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे ब्रह्म का रूप है आनंदमय है। और वो कह रहे हैं कि जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण है वह भगवान के शक्ति के बिना अपने आप नहीं चल सकते, ये भगवान से बहुत नीचे रह जाते हैं। कोट करते हैं माया परैति अभिमुखे च विलज्यमानः, माया जो है भगवान के सामने नहीं आ पाती, उसको बहुत शर्म आती है। और ये बता सकता है कि माया को शर्म आती क्यों है? माइक पे बताइएगा।
क्योंकि वो जीवों को दुख देती
है। यस, वो जीवों को दुख देती है, तो वो भगवान को बहुत प्रिय है, लेकिन अब उनको एक थैंकलेस कार्य करना पड़ रहा है। माया भगवान जीवों को दुख क्यों देती, क्यों है माया को, क्या मिलता है?
कि वो कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते।
वेरी गुड, तो कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते तो इसलिए माया उसको दुख देती है। किसी को श्लोक याद है? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतेव माया दे तार संसार दुख। एक ही कारण है दुख प्राप्त करने का। तो यहाँ पे माया यानी कहने करती है कि माया भगवान के सामने नहीं आ सकती। जैसे सूर्य, आप उदाहरण में जानते हो, सूर्य अगर कहे कि मुझे अंधकार देखना है, अंधकार कैसा होता है, तो क्या संभव है? संभव नहीं। वो तो वो अपॉइंटमेंट जो है सेट नहीं हो सकता। तो माया कभी भगवान को नहीं छू सकती। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो कहते हैं, कभी शायद सुना नहीं होगा आपने, लेकिन मैंने भी समझने में थोड़ा समय लगा था मेरे को। कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा से ही आनंद ब्रह्मा जी का रूप लेता है। रजोगुण का संग करने के कारण आनंद ब्रह्मा का रूप लेता है। तो मेरे को समझ में, आनंद का मतलब क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा ना। आनंद मतलब भगवान कृष्ण, यहाँ लिखा है ना आनंद ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म का रूप भगवान कृष्ण का रूप क्या है, आनंदमय है। तो भगवान का एक नाम आनंद भी है, तो क्योंकि भगवान का स्वरूप ही आनंद है, तो भगवान कृष्ण है। यही बात जो पिछले श्लोक में बताई गई थी, आप पढ़ लेना, स एक एव पुरुषस पुरुषस परः पुरुष एहास दत्ते। भगवान कृष्ण ही अपने आप को गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं, सत्वगुण को स्वीकार करते हैं, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा बनते हैं, शिव जी बनते हैं, ये आप जान नहीं रहे हो। तो यही उनका कहने का एक स्टाइल है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का, कि आनंद ही रजगुण का संपर्क करके ब्रह्मा जी के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं, मतलब गुणावतार के रूप में भगवान कृष्ण के ब्रह्मा जी प्रस्तुत हो रहे हैं। वही आनंद जो है ढकने की प्रवृत्ति से युक्त होकर शिव जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं, मतलब शिव जी भगवान के तमगुण के अवतार हैं, और भगवान विष्णु जो है जो प्रकाशन करने वाले हैं वो भगवान कृष्ण के सतगुण के अवतार। ये कहने का स्टाइल है थोड़ा सा। तो उसमें जो है तो कह रहे हैं कि क्योंकि अगर आनंद अगर सतगुण में मिलता है तो कोई नुकसान नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि सुबह की क्लास शाम की क्लास से ज्यादा अच्छी लगती है, कभी आप अनुभव करें। शाम की क्लास से नहीं, मेरा कहने का अर्थ है कि दोपहर में सोचिए क्लास सुनने का मन नहीं करता प्राय, अब देखिए ना बिल्कुल मन नहीं करता, शायद शाम को सुनने को अच्छा लगता है, नहीं तो सुबह सुनने को अच्छा लगता है। सुबह स्पेशली कोई अच्छा वक्ता हो तो क्लास सुनने में बहुत अच्छी लगती है। आपने अनुभव किया इस बात को? ये जप हम तो सुबह करते ही हैं, तब देखिए जप करना कितना आसान होता है सुबह, और वही जब आप दिन में करी चाहे नींद भी नहीं आए लेकिन बहुत आपको जो है कठिनाई महसूस होती है। तो हम देख रहे हैं कि जो सतोगुण है वह आनंद का रोकने वाला नहीं है, ये बात बोल रहे हैं। इसलिए भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। फिर ध्यान देना होगा कि भगवान विष्णु जो है ये सतोगुण में है नहीं, केवल सतोगुण को स्वीकार कर रहे हैं दूर से। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मिस्टेक कभी नहीं होनी चाहिए। कभी नहीं बोलना कि भगवान विष्णु सतोगुण में है। हरि ही निर्गुण साक्षात भगवान हरि श्री विष्णु कृष्ण नारायण, ये हमेशा ही निर्गुण अवस्था में रहते, ठीक, तुरीय अवस्था। वेरी गुड। अच्छा, अब वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, सारी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहे हैं कि ये तीनों एक ही हैं, विष्णु ब्रह्मा जी और शिव जी हैं, लेकिन किस दृष्टि से एक हैं? कि ये तीनों भगवान के गुणावतार हैं। बहुत ध्यान पूर्वक इस बात को सुनिए। जैसे हम सब लोग एक ही हैं, किस दृष्टि से? जीवात्मा एक, और व्यवहारिक रूप से बताइए, हम सब लोग पुरुष हैं एक दृष्टि से, नहीं है? आप स्त्री हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या है फिर? व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल मतलब सब लोग लड़के हैं पुरुष हैं, ये तो एक बात दृष्टि से, लेकिन क्या हम लोग एक ही हैं बिल्कुल? ये बात बहुत समझ दीजिएगा। ये बात में आप, क्योंकि ये लोग बोलते हैं ना कि तीनों एक ही हैं, तीनों एक हैं, ये भागवत को ही लेके शायद बोल देते होंगे, लेकिन उसे गलत अंडरस्टैंडिंग है। तो एक किस दृष्टि से है? कि तीनों ही ब्रह्मा जी शिव जी और विष्णु भगवान वो गुणों को स्वीकार कर रहे हैं, गुणों से डील कर रहे हैं, किसे कहा जाए। लेकिन भगवान कृष्ण को कोई मतलब नहीं, वो अपनी लीला में है व्यस्त है। ये बात समझ में आ रही है? तो किस दृष्टि से सेम है? गुणावतार है, इस दृष्टि से सेम है। जैसे भगवान भी यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए चैतन्य महाप्रभु भी युग धर्म की स्थापना किए, तो क्या चैतन्य महाप्रभु युगावतार है? तो आपको जो है यह पढ़ना पड़ेगा चैतन्य चरितामृत में कि जब महाप्रभु के हृदय में इच्छा आई, जो आंतरिक कारण था कि मैं राधारानी के भाव को स्वीकार करूंगा, उसी समय कलयुग का प्रादुर्भाव हो गया और युग धर्म स्थापना करने की समय आ गया। नहीं तो महाप्रभु को युग धर्म स्थापना करने की आवश्यकता नहीं, वो युगावतार नहीं है, हर युग में नहीं आते। आप जानते हो महाप्रभु हर युग में नहीं आते, ब्रह्मा जी के दिन में एक ही बार आते। तो ये सब बातें समझ लेना चाहिए, समझते हुए चलना चाहिए। उसी प्रकार से मैं खाली बोल रहा हूं इस बात में कि भगवान विष्णु में क्या, भगवान ब्रह्मा जी विष्णु और सॉरी हाँ ब्रह्मा जी विष्णु और शिव जी किस प्रकार से उनमें अभेद है कि वे तीनों ही गुणावतार हैं, लेकिन भेद आप जानते हो कि भगवान विष्णु ही निर्गुण है, वह बाकी लोग दोनों निर्गुण नहीं है। अब उसके बाद वह कहते हैं कि देखिए बहुत तो इजी बात है, समझ में आ जाता है कि जीव भी निर्गुण है, असंगो ही अयम पुरुष, यानी आत्मा जो है वो कभी गुणों से प्रभावित नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि परमात्मा और जीवात्मा दोनों ही स्वरूप से गुणों से प्रभावित नहीं होते, लेकिन जो परमात्मा है वह तो चिद शक्ति, समझते हैं ज्ञान शक्ति, चिद शक्ति के सागर हैं और हम क्या हैं, एक बूंद मात्र हैं। तो हमारे अंदर प्रवृत्ति है कि माया से ढक जाएं, भगवान कभी नहीं ढक सकते हैं, इस बात को वह कह रहे हैं। और ये क्यों कह रहे हैं, वो कह रहे हैं क्योंकि भगवान चित शक्ति के स्वरूप हैं, पूरा सागर हैं, इसलिए जब वह गुणों को स्वीकार करते तो उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई जैसे एक अंगार है, खूब इसमें उसकी बात कर रहे हैं, खूब अंगार है, अब अंगार को आप समुद्र में डाल दीजिए थोड़ा समुद्र उबलने लग जाएगा, लेकिन अगर पानी की छोटी सी बूंद में डाल देंगे तो वह बुझ जाएगी या वो उबलने जाएगी, जैसे कह दीजिए। तो जीव जब माया के संपर्क में आता है तो प्रभावित हो जाता है, लेकिन भगवान कभी भी प्रभावित नहीं होते, ये बात समझा रहे हैं। बार बार इस बात को बोलना पड़ेगा क्योंकि ये बात शायद लोगों को समझ में नहीं आती, आप लोग तो भक्त समझ में आ गए कि भगवान विष्णु निर्गुण है, कभी भी किसी भी लीला को देख रहे हैं सुन रहे हैं तो ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि भगवान निर्गुण है। वो लीला आपको लगेगा कि स्त्रियों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं या कुछ हो रहा है या गोपियों से आकर्षित हो रहे हैं, मतलब काम वासना से प्रभावित होकर, लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान निर्गुण है। इसीलिए प्रथम स्कंद पढ़ना बहुत जरूरी, तब तो जब ठीक से समझ में आ जाएगा तब हम भगवान की लीला को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे।
देख सकते हैं कि सूर्यदेव एक साथ मल पे कीचड़ पे और सब पे करते हैं, लेकिन सूर्यदेव तभी निर्लिप्त नहीं, ऐसे नहीं कहते कि सूर्यदेव जो मल से जो प्रभावित हो गए
हाँ।
और गंगा जल से अप्रभावित हो गए।
उसी प्रकार से एक और उदाहरण दिया जाता है कि चंद्रमा एक गाय काटने वाले के यहाँ पे भी रोशनी देता है, उससे कोई वैसे प्रभाव नहीं होता, उसकी रोशनी जो है सर्वत्र सब जगह प्राप्त है। खैर वैसे वो उस उदाहरण से दिया जाता है कि भगवान सम है, लेकिन कहने कर दिया कि भगवान इस जगत की किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं होते, कोई गुणों से प्रभावित नहीं होते, उनका ज्ञान और स्वरूप कभी भी नष्ट नहीं होता, जब भी भगवान यहाँ पे आते हैं तब भी। तो आप लोगों की प्रसन्नता के लिए प्रवचन समाप्त हो गया है, कि बताइए कि कोई किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हमने ये सीखा कि जिस प्रकार से पृथ्वी से उत्पन्न लकड़ी जो है वह श्रेष्ठ होती है, लेकिन लकड़ी में प्रवृत्ति नहीं होती, अपनी कार्य नहीं करती है, वह प्रकाश नहीं देती, और धुआं जो है उसमें प्रवृत्ति होती है लेकिन वो प्रकाश नहीं देता, और सतोगुण जो सॉरी अग्नि जो है वो प्रकाश भी देती है और प्रवृत्ति भी होती है, प्रवृत्ति मतलब एक्शन भी होता है। उसी प्रकार से सतोगुण तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है, रजोगुण से श्रेष्ठ सतोगुण है। तो क्योंकि जो विभिन्न देवता हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी ने रजोगुण को स्वीकार किया हुआ है, शिव जी ने तमोगुण को स्वीकार किया, उसे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने सतोगुण रजोगुण को स्वीकार किया है, और विष्णु भगवान की पूजा करने वाले भगवान विष्णु सत्वगुण को स्वीकार करते हैं, और जो उनकी पूजा करता है वह भी निर्गुण हो जाता है, इसलिए उनकी ही पूजा हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद।